क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध की विवेचना करें। उत्तर, संविधान के अनुच्छेद 245 से 293 एवं अनुच्छेद 301 से 307 भाग 11, 12 एवं 13 तथा अध्याय क्रमशः 1 और 2 एवं अध्याय 1 में केंद्र मतलब संघ और राज्यों के बीच संसद की विस्तृत चर्चा की गई है। साधारणतया संघ और राज्यों के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं, ए विधायी संबंध, बी प्रशासनिक संबंध, सी वित्तीय संबंध। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 से 255 अध्याय 1 भाग 11, बी प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 अध्याय 2 भाग 11, वित्तीय संबंध में अध्याय 1 एवं 2 भाग 12। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। संघ सूची, इसके अंतर्गत 97 विषय हैं जिनमें मुख्य हैं देश की रक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध और संधि, परमाणु ऊर्जा, रेल, वायु मार्ग, समुद्री जहाज, डाक तार, टेलीफोने, नागरिकता, जनगणना, सीमा शुल्क, निगम कर आदि। इन विषयों पर संसद की कानून बना सकती है। राज्य सूची, इसके अंतर्गत स्थानीय महत्व के 61 विषय हैं जिनमें लोक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, स्थानीय शासन, स्वच्छता और औषधालय, परिवहन, क्रय या विक्रय आदि मुख्य हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, नापतौल समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं और समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को शामिल किया गया है। इस प्रकार समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 हो गई है। कुछ प्रमुख विषय हैं विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, आर्थिक और सामाजिक योजना आदि। इन विषयों पर संघ और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, परंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संघ सूची में संघ और सशस्त्र बल पर संघ का नियंत्रण विषय जोड़ा गया है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति। कुछ विशेष परिस्थिति में संसद राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वे हैं, पहला, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर संविधान में अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा, राज्य के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाए तो उन राज्यों के समस्त विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यों के विधानमंडल न तो इन कानून में संशोधन कर सकते हैं और न इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 252 में इसे कहा गया। तीसरा, संकटकालीन घोषणा प्रवर्तन होने पर संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्तियों पर संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति को के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलते रहेंगे। अनुच्छेद 250। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी करने के लिए विधान। यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से कोई संधि की है तो इस संधि के पालन हेतु तो संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा के अंतर्गत किसी भी विषय पर नियम निर्माण का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 253 के अंतर्गत कहा गया है। पांचवा, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार संसद को प्रदान कर सकता है। यह अनुच्छेद 356 में कहा गया है। छठा, कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित करने हेतु केंद्र की अनुमति आवश्यक है। राज्य व्यवस्थापिका को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधानों से कुछ दशाओं में छूट संबंधित विधेयक और अनुच्छेद 304 सार्वजनिक हित के दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उससे बाहर व्यापार वाणिज्य या मेल जोल पर प्रतिबंध लगाए जाने वाले विधेयक पर विधानमंडल में प्रस्तावित करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। सातवां, राज्यपाल द्वारा विधेयक आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 संविधान में यह उपबंध करना है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण आदि से संबंधित कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। आठवां, अवशिष्ट शक्तियां। अनुच्छेद 248 के अनुसार जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय नहीं हो तो अवशेष शक्ति केंद्र में निहित होगी। संघ सरकार उस पर विधि का निर्माण कर सकेगी। नौवां, राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधि बनाने की संसद की, उस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान द्वारा साधारणतया संघ तथा राज्य सरकारों को अलग अलग विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन राष्ट्रीय हित को देखते हुए कुछ विशेष परिस्थिति में संघ सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरा, प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। डीडी बसु के शब्दों में, संघीय व्यवस्था की सफलता और दृढ़ता संघ की विविध सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों पर संघीय शासन के नियंत्रण की व्यवस्था निम्न उपायों के आधार पर की गई है। पहला, राज्य सरकारों को निर्देश, अनुच्छेद 256, 257, 305 और 339। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था संघीय सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है और यह किसी भी परिसंघीय संविधान में नहीं पाई जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है। अनुच्छेद 256 यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार को आवश्यक दिखाई दे। अनुच्छेद 257, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति को इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा इस संबंध में संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्य को निर्देश दिया जा सकेंगे। दूसरा, एक दूसरे को एक दूसरे का कार्य सौंपना। अनुच्छेद 258(1) के अनुसार संघ अपने कृत्यों को राज्य सरकार को सौंप सकती है। यदि राज्यों की सरकार या उससे उसके अधिकारी उसे पूरा न करे तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर राज्य का शासन अपने हाथों में ले ले। अनुच्छेद 258 को यह उपबंधित करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त के उसे सौंप सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां किसी भी सरकार के लिए अपने प्रशासनिक कार्यों के सीधे संचालन में असुविधा होती है तो वे दूसरी सरकार द्वारा उसे संपादित करवा सकती है, किंतु राज्य केंद्र को अपने कृत्य केंद्र की सहमति से ही दे सकता है, जबकि केंद्र अपने कृत्यों को राज्यों को उनकी सहमति के बिना भी सौंप सकती है। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312। संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, किंतु भारतीय संविधान में इन सेवाओं के अतिरिक्त एक संघ और राज्यों के सम्मिलित सेवाओं का भी उपबंध करता है जिसे अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषणा कर देती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। चौथा, केंद्रीय अनुदान। संघीय शासन राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकता है। अनुदान देते समय संघ राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उसके व्यय को भी नियंत्रित कर सकता है। अनुच्छेद 275 में संघ सरकार द्वारा राज्यों के सहायतार्थ अनुदान से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ए, इसके माध्यम से संघ सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि अनुदान प्रायः कुछ शर्तों के आधार पर देती है। यदि कोई राज्य इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसका अनुदान रोका जा सकता है। और बी, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों में सहयोग और समन्वय की भावना का सृजन होता है, और यदि कोई राज्य अपनी जनता के कल्याण हेतु योजनाओं को विकसित करना चाहता है तो वह केंद्र से अनुदान मांग सकता है और केंद्र उसे सहर्ष अनुदान प्रदान करता है। पांचवा, अंतरराज्यिक जल संबंधी विवादों का निपटारा। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अंतरराज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल प्रयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकती है। छठा, संघ राज्य समन्वय। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जून 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया है। अंतर्राज्य परिषद के कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। ए, वह राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करेगी और उस पर सलाह देगी। बी, कुछ या सब राज्यों के या संघ और एक या अधिक राज्यों के पारस्परिक हित से संबंध विषयों का अनुसंधान और उस पर विचार विमर्श करेगी। सी, ऐसी किसी विषय के बारे में अच्छे समन्वय के हेतु नीति या कार्यवाहियों की सिफारिश करेगी। सातवां, संचार संसाधनों की रक्षा। समस्त भारतीय संघ के संचार साधनों की रक्षा का भार भी संघीय सरकार पर ही है। संघ सरकार राज्यों के अंतर्गत हवाई अड्डों, रेलों तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के आवागमन और संचार साधनों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है, जिनका पालन राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है। आठवां, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इन सबके अलावा राज्य सरकारों पर संघीय शासन के नियंत्रण का प्रमुख उपाय यह है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, जो वहां राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। यह अनुच्छेद 155 के तहत कहा गया। नौवां, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अन्य किसी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो इस प्रकार का आरोप पत्र कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को दिया जाता है और संघ सरकार को ही इस बात के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है कि इन आरोपों की न्यायिक जांच करवानी चाहिए अथवा नहीं। आरोप सिद्ध हो जाने पर संघ सरकार संबंधित मंत्रियों को पद छोड़ने के लिए कह सकती है। दसवां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक संकट हो या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या अपने विवेक से राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है अथवा नहीं, इस संबंध में निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति अर्थात संघ सरकार को ही प्राप्त है और राष्ट्रपति शासन की यह बड़ी छड़ी राज्यों को केंद्र के सभी निर्देश मानने के लिए बाध्य करती है। वित्तीय संबंध। संविधान द्वारा संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध निम्न है। ए, कर निर्धारण शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्व विभाजन कर दिया गया है और द्वितीय, करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार हैं: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, रेलें, विदेशी ऋण, रेलें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। राज्यों के राजस्व स्रोत हैं प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण हैं बिल, विनियमों, प्रोमिसरी नोट, हुंडियों, चेकों आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा, मादक द्रव्य पर कर, शौक श्रृंगार की चीजों पर कर तथा उत्पादन शुल्क। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण हैं: कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा शक्तियों, यात्रियों पर सीमांत कर, रेल भाड़ों पर कर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर। कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं पर उनका विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच होता है। आयकर का विभाजन संघीय भूभागों के लिए निर्धारित तिथि निर्धित तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आयकर के अतिरिक्त दवा तथा शौक श्रृंगार संबंधित चीजों के अतिरिक्त अन्य चीजों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिए जाने वाला अनुदान। संविधान के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों के चार तरह के सहायक अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रथम, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा को दे दिया जाता है। अनुच्छेद 273(1) के तहत द्वितीय, बाढ़, भूकंप व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी संघ सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। तृतीय, एसटी व कबीलों की उन्नति व उसके कल्याण की योजनाओं के लिए सहायक अनुदान दिया जाता है। चतुर्थ, राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता कर सकता है। तीसरा, ऋण लेने संबंधी उपबंध। संविधान संघ सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि अनुच्छेद 266 को साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। उधार लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार कर्ज देते समय संघ सरकार किसी प्रकार का शर्त लगा सकती है, यह अनुच्छेद 293 में कहा गया है। चौथा, करों को विमुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते, यह अनुच्छेद 285(1) के तहत कहा गया है। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती है, यह अनुच्छेद 289(1) के तहत कहा गया है। पांचवा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती है, यह अनुच्छेद 151(2) के तहत कहा गया है। छठा, वित्तीय संकटकाल। वित्तीय संकटकाल घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों से आय में भाग बांटने से संबंधित हो। संघ सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है, यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कहा गया है। भी राज्य सरकार की कर लगाने की शक्ति निर्बंधन। अनुच्छेद 286 के अधीन राज्य सरकार की कर लगाने की शक्ति पर संघ सरकार रोक लगा सकती है।